ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है और ये उन आपराधिक घटनाओं का नाट्य और काल्पनिक रूपांतरण है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी को अपराधी ठहराना, किसी अपराध का फैसला सुनाना या अपराध को लेकर लोगों के दृष्टिकोण को प्रभावित करना नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन या किसी समूह के व्यक्तियों, लिंग, जाति, समाज, संप्रदाय, धर्म या क्षेत्र की निंदा या अवमानना करना नहीं है। इस कार्यक्रम में किसी भी मत, विचारधारा या बयान आदि को लेकर किसी भी तरह के विवाद या मतभेद के लिए चैनल या HT मीडिया लिमिटेड किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए दर्शकों को अपने विवेक का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।
फीवर केस 104, जुर्म के पीछे की दास्तान।
ख्वाहिशों के दौर में हाशिए पे जिंदगी, इंसान की बनाई दुनिया इससे बेहतर क्या होगी। मैं हूं वीर राठौड़ और मैं ले चलता हूं आपको राजस्थान, जहां सारे देश की राजनीति में भूचाल ला देने वाली कजरी देवी हत्याकांड में भारी दबाव के बाद भी न सिर्फ पुलिस जांच सुस्त चल रही थी, बल्कि सरकारी एजेंसीज एक के बाद एक गलतियां किए जा रही थी। यहां तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस चीफ से उनके एक स्टेटमेंट में भारी चूक हुई।
क्या इतना सब होने के बाद भी पुलिस के पास कजरी का कोई क्लू नहीं है?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें कजरी की बॉडी नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास कोई क्लू नहीं है।
इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि पुलिस ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि कजरी की हत्या हो चुकी है?
नो, मेरा मतलब ये नहीं था। एक्चुअली
अभी तक तो सिर्फ रतन चंद ही कजरी के कत्ल की बात कर रहा था, पर पुलिस चीफ के गलती से ही सही ऐसा स्वीकार कर लेने के बाद तो राजस्थान सरकार की मुश्किलें और बढ़ने वाली थी। और इसका नतीजा सामने भी आया जब राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया और कई दलित संगठन और राजनीतिक दल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए।
कजरी की हत्या रोको,
सजा दो,
मंत्री को बर्खास्त करो, सीबीआई की जांच हो,
जांच हो।
हालात ये थे कि उधर लोग सड़कों पे थे तो इधर पुलिस कोई ठोस कार्रवाई करने की जगह सिर्फ हवा में हाथ पांव मारती ही नजर आ रही थी।
The police are looking for Dhanram, a ruling party leader who is supposed to be the mastermind of the crime. Sukhdev and Nawazuddin were the executors. Nawazuddin already has many cases registered against his name and is the person whose phone has been linked with Kajri Devi's near Jodhpur.
हमारे सूत्र बताते हैं कि पुलिस की थ्योरी के अनुसार कजरी की किडनैपिंग के वक्त नवाजुद्दीन कजरी के साथ था।
इधर राज्य सरकार का विरोध इतना बढ़ गया कि मुख्यमंत्री को हाई कमांड के सामने सफाई देने के लिए समन किया जाना मजबूरी बन गया। उधर कोर्ट का रुख भी पुलिस पर बहुत सख्त था।
कोर्ट ने प्रदेश पुलिस को उसकी ढीली इन्वेस्टिगेशन के लिए झाड़ लगाते हुए कहा है कि एक महीने बीत जाने पर भी सुखपाल सिंह से पूछताछ क्यों नहीं हो सकी, जबकि कोर्ट बहुत पहले ही सुखपाल के खिलाफ केस शीट फाइल करने को आदेश दे चुका है।
आखिरकार चौतरफे दबाव के बाद हाईकमान से चर्चा करके लौटे मुख्यमंत्री पर इस बात का दबाव था कि वो सुखपाल सिंह को उनके पद से हटाएं। हालांकि दल चाहता था कि वो स्वयं इस्तीफा दे, पर जब बहुत कहे जाने के बाद भी सुखपाल सिंह इस्तीफा देने से लगातार इनकार करते रहे तो कोई उपाय न देखकर मुख्यमंत्री ने उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश की और केस सीबीआई को सौंप दिया।
सर, एनी डिसीजन अबाउट मिनिस्टर सुखपाल सिंह?
उन्हें मंत्री पद से मुक्त कर दिया गया है।
और पुलिस की इस धीमी जांच के बारे में आपका क्या कहना है?
अब जब तक सीबीआई
वन बाय वन प्लीज।
सर, निष्पक्ष जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
बिल्कुल, निष्पक्ष जांच हो सके इसलिए सीबीआई को सौंपने की सिफारिश कर दी गई है। अब सच जल्द ही आपके सामने आएगा। बस मुझे इतना ही कहना।
केस सीबीआई के हाथ में आते ही जांच ने रफ्तार पकड़ी और सामने आते ही हर नए तथ्य के साथ सारी कहानी खुलकर सामने आने लगी। अब सीबीआई को रतन चंद ने वारदात के दिन का डिटेल इस तरह बताया।
कचरी ने अपनी स्विफ्ट कार अस्पताल के एक ठेकेदार मोहनलाल को 4 लाख में बेची थी, तो उसने कुछ रुपए तो दे दिए थे पर बाकी बाद में देने थे। मोहनलाल ने 1 सितंबर को बाकी रुपए देने की बात कही थी साहब जी। फिर जब 1 तारीख को कजरी मोहन के साथ उसकी बलेरो में बैठ के पैसा लेने को निकली।
सुनो, मैं जा रही हूँ, पैसा लेके लौट आऊंगी, बच्चों का ख्याल रखियो।
सुनो, तुम अपना ख्याल रखना, आजकल भरोसा कोनी।
अरे चिंता कोनी करो, अभी आ जाऊंगी। ठीक है
ठीक है ठीक है। ठीक से जाना। बस साहब जी, उस दिन जो कजरी गई है, घर से निकली है, तो उसके बाद वापस लौटी कोनी साहब जी।
इसके बाद सीबीआई के सामने साफ था कि उसे किसकी तलाश थी, और सीबीआई ने कोई देर न करते हुए जोरदार तलाश की और जल्द ही मोहनलाल, सुखदेव और नवाजुद्दीन उसकी गिरफ्त में थे।
सीबीआई has arrested three accused in Kajri Devi's case, Mohanlal, Sukhdev and the main mastermind Nawazuddin. Nawazuddin is a known felon with an established criminal record in the system.
आखिरकार इतने दिन पसीना बहाने के बाद सुखदेव, मोहनलाल और नवाजुद्दीन सीबीआई की गिरफ्त में आ गए।
कहा जाता है कि नवाजुद्दीन ही वो आदमी है जिसने ये सारी योजना बनाई और अपनी योजना को अंजाम देने के लिए मोहनलाल और सुखदेव को साथ लिया।
दरअसल एक समय दो बेटियों और एक बेटे की मां कजरी देवी स्वास्थ्य उपकेंद्र में नर्स थी और उसका पति ड्राइवर, और उनका छोटा सा परिवार ठीक से चल रहा था।
अले ले ले, मारी बेटी डॉक्टर बनेगी, बनेगी ना, स्कूल जाएगी, बड़ी डॉक्टर बनेगी, बाबा का नाम रोशन करेगी, है ना?
क्यों छुट्टे ख्वाब दिखा रही बच्चों ने? ड्राइवर की बेटी है, डॉक्टर को नहीं बने, समझी?
के बात करो हो जी, देखना तमने भी हमेशा ड्राइवर को नहीं रहना, दस दस गाड़ियां होगी मारी, देख लीजो।
दस दस गाड़ियां, तू वीणा कजरी।
कजरी ने ये बातें हवा में नहीं कही थी, असल में वो जितनी खूबसूरत थी उससे भी अधिक महत्वाकांक्षी। पति और अपनी कमाई उसके लिए कुछ नहीं थी, वो बहुत सारी दौलत चाहती थी और उससे भी अधिक शोहरत। कहते हैं कि दौलत ही दौलत को खींचती है, पर उसके पास कुछ और भी था जो दौलत को खींच सकता था, और वो थी उसकी बेहिसाब खूबसूरती। इसीलिए उसने अपनी इस खूबसूरती को अपना हथियार बनाया और एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी जहां उसे भी नहीं पता था कि वो रास्ता उसे कहां ले जाएगा। और सबसे पहले उसके जाल में आया सत्ताधारी दल का विधायक रक्षण सिंह विश्नोई। रक्षण बाल बच्चेदार आदमी था, पर कजरी की खूबसूरती के सामने पिघलते उसे जरा भी देर नहीं लगी। वो हर आने वाले पल के साथ चाहे अनचाहे कजरी के और करीब आता जाता, और कजरी को यही तो चाहिए था। वो रक्षण सिंह की इस भड़कती आग में अपनी मादकता की आंच बढ़ाती गई, जिसके नतीजे में जल्द ही उन दोनों के बीच एक अनकहा समझौता हो गया था। कजरी रक्षण को अपने करीब आने देती और बदले में रक्षण अपने पैसे और सत्ता की ताकत से उसकी हर इच्छा पूरी करता।
एक काम था नेताजी, पर सोचूं हूं कहीं आप मना तो ना कर दोगे।
काई बात कर रहा है कजरी, कभी तने मैं ना बोली है, तू बोल तो एक बार।
मारे किसी अपने का काम था नेताजी।
ओ थारे अपने मारे अपने ना हुए क्या? अरे तू अपनी तो थारे अपने भी मारे अपने।
आप बेणा नेता जी, मजाक करो हो।
कुछ ही दिन में कजरी और रक्षण सिंह बिश्नोई इतने करीब आ गए कि उसके परिवार ने भी कजरी को अपना लिया। यहाँ तक कि रक्षण की बहन बिंद्रा कजरी को भाभी तक कहने लगी थी।
के बात है भाभी, फोन कोनी करती आजकल, कोई नाराजगी हो गई क्या?
ऐसी बात कोनी बोल बिंद्रा, तुझसे भी भड़ा मैं नाराज हो सकूं? एक तू ही तो है जिसे मैं अपने दिल की बात कह सकूं। इधर गांव से है ना कुछ लोग आ गए थे, अब तुझे तो मालूम ही है बिंद्रा, छोटा सा तो घर है मेरा, अब चार लोग आ जाए तो परेशानी हो जाती है।
चिंता कोनी भाभी, घर भी बड़ो हो जावेगो, थारा जादू भाई जी से कुछ भी करा सके हैं। अच्छा राखू हूँ, खमा गणी।
ऐसा लगता था कि ये तो सिर्फ कजरी की चाहतों की शुरुआत भर थी। उसके सामने छूने के लिए ऊंचाइयों का अनंत आकाश था, और इर्द गिर्द मंडराने वाले ढेरों भंवरे जो उसके एक इशारे पर लुट जाने को तैयार थे। पर कजरी की वो चाहतें क्या थी, और वो धीरे धीरे बढ़ती कैसे गई इस हद तक कि उन्होंने खुद कजरी को ही मौत के मुंह में पहुंचा दिया।